फ्रेंड्स, ओशो रेडियो में हम सबका हार्दिक स्वागत। आज का एपिसोड गुरु और शिष्य के बीच घटने वाले इस परम अनूठे की ओर इशारा है और रजब और दादू दयाल के माध्यम से आज हम ओशो से गुरु कैसे अपने शिष्य का हाथ जन्मों जन्मों तक पकड़ता है, इसकी एक छोटी सी झलक लेंगे। यह डिस्कोर्स संतो मगन भया मन मेरा वॉल्यूम नंबर 1 से लिया गया है।
हर आन यहां सहबाए कोहन एक साकर नौ में ढलती है, कलियों से हुस्न टपकता है, फूलों से जवानी उबलती है। यहाँ हुस्न की वर्क चमकती है, यहाँ नूर की बारिश होती है। हर आह यहाँ एक नगमा है, हर अश्क यहाँ एक मोती है। हर शाम है सामे मिश्र यहाँ, हर शब है सबे शिराज यहाँ। है सारे जहाँ का सोज यहाँ और सारे जहाँ का साज यहाँ। यह दस्त जुनू दीवानों का, यह बज्म बफा परवानों की। यह सहर तरब रुमानों का, यह खुल्द बरी अरमानों की। इस फर्श से हमने उड़ उड़ कर अफलाक के तारे तोड़े हैं। नाहीस से की है सरगोसी, परवीन से रिश्ते जोड़े हैं। इस बज्म में तेगे खींची हैं, इस बज्म में सागर तोड़े हैं। इस बज्म में आंख बिछाई है, इस बज्म में दिल तक जोड़े हैं। इस बज्म में नेजे फेंके हैं, इस बज्म में खंजर चूमे हैं। इस बज्म में गिर गिर तड़पे हैं, इस बज्म में पीकर झूमे। एक ही जगत है, यही जगत। फिर चाहो नरक बना लो, चाहे स्वर्ग। जगत मात्र एक अवसर है, कोरी किताब। क्या तुम लिखोगे तुम पर निर्भर है, और केवल तुम पर। किसी और की कोई जिम्मेवारी नहीं। नरक में जीना हो नरक बना लो, स्वर्ग में जीना हो स्वर्ग बना लो। तुम्हारे हाथों का ही सारा निर्माण है। यहां सब मौजूद है। युद्ध करना हो तो युद्ध, और प्रेम की छाया में जीना हो तो प्रेम की छाया। शांति के फूल उगाने हो तो कोई रोकता नहीं, निर्वाण के दिए जलाने हो तो कोई बुझाता नहीं। और अगर जख्म ही छाती में लगाने हो तो भी कोई हाथ रोकने आएगा नहीं। तुम मुक्त हो, तुम स्वतंत्र हो। मनुष्य की यही महिमा है, यही उसका विषाद भी। विषाद कि मनुष्य स्वतंत्र है, गलत करने को भी स्वतंत्र है। स्वतंत्रता में गलत करने की स्वतंत्रता सम्मिलित है। अगर ठीक करने की ही स्वतंत्रता होती तो उसे स्वतंत्रता ही क्या कहते हैं। स्वतंत्रता का अर्थ ही होता है गलत होने की स्वतंत्रता भी है। चाहो तो मिटा लो, चाहो तो बना लो। चाहो तो गिर जाओ मिट्टी में और कीचड़ हो जाओ, और चाहो तो कमल बन जाओ। जीवन एक कोरा अवसर है, बिल्कुल कोरा अवसर, जैसे कोरा कैनवास हो और चित्रकार उस पर चित्र उभारे, कि अनगढ़ पत्थर हो कि मूर्तिकार उसमें मूर्ति निखारे। शब्द उपलब्ध है, चाहो गालियां बना लो और चाहे गीत। इस बात को जितने गहरे में उतर जाने दो हृदय में उतना अच्छा है। भूल के भी मत सोचना कि कोई तुम्हारे भाग्य का निर्माण कर रहा है। उस बात में बड़ा खतरा है, फिर आदमी अवस हो जाता है। फिर जो हो रहा है हो रहा है, फिर सहने के सिवाय कोई उपाय नहीं। फिर आदमी मिट्टी का लौंदा हो जाता है, उसके प्राण सूख जाते, उसमें जीवन की धार नहीं बहती। चुनौतियों को अंगीकार करने की सामर्थ्य खो जाती, और जहां चुनौतियों को अंगीकार करने की सामर्थ्य नहीं वहां आत्मा का जन्म नहीं। आत्मा जन्मती है चुनौतियों के स्वीकार करने से। तूफानों में पैदा होती है आत्मा, आंधियों अंधड़ों में पैदा होती है आत्मा, और बड़े से बड़ी आंधी यही है कि तुम अपनी स्वतंत्रता को स्वीकार कर लो। कठिन होगी बात, क्योंकि सारा दायित्व सिर पर आ जाएगा। अभी तो सोचने के लिए बहुत उपाय हैं कि क्या करें, किस्मत, भाग्य, कर्म, भगवान, क्या करें। अभी तो दूसरे पर टालने का उपाय है, लेकिन ये तुम्हारी तरकीब है और चालबाज तरकीब है। ये सिद्धांत तुम्हारे गढ़े हुए हैं और बेईमानी से भरे। इन सिद्धांतों की आड़ में तुमने अपने को खूब छिपा लिया, और पाया क्या छिपाने से, इतना ही पाया कि नरक बनाने की सुविधा मिल गई और स्वर्ग बनाने की क्षमता खो गई। उस मनुष्य के जीवन में धर्म की शुरुआत होती है जो इस पहले कदम को उठाता है, जो कहता है मैं निर्णायक हूं, नरक जाऊंगा तो मेरा निर्णय, जिम्मेवारी किसी पर थोपूंगा नहीं, तो इस बात को जानकर जाऊंगा कि मुझे नरक ही जाना है। कम से कम इतना तो आश्वासन रहेगा, इतनी तो सांत्वना रहेगी, इतना तो संतोष रहेगा कि अपने ही निर्णय से जिया हूं। लेकिन अगर तुम्हें यह पक्का पता हो जाए कि नरक तुम अपने ही निर्णय से जाते हो, तो क्या तुम नरक जाना चाहोगे? कौन जाना चाहेगा? दुख को कोई निर्माण नहीं करना चाहता। इसलिए जैसे ही ये तीर तुम्हारे प्राणों में चुभ जाए कि मैं स्वतंत्र हूं, वैसे ही स्वर्ग का निर्माण शुरू हो जाता है। पृथ्वी यही है, स्थान यही है, यहीं कोई बुद्ध की तरह जी लेता है और यहीं कोई बुद्धों की तरह, यहीं कोई परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है और समाधि की सुवास में नाचता है, और यहीं कोई सड़ता है, यहीं ठीक एक ही जगह है, लेकिन यहां उतनी ही दुनियाएं हो गई हैं जितने यहां लोग हैं। आज जिस अनूठे आदमी की वाणी में हम यात्रा शुरू करेंगे, वह आदमी निश्चित अनूठा था। कभी कभी ऐसे अनूठे आदमी होते, और उसके जीवन से जो पहला पाठ तुम्हें मिल सकता है वो यही है। रजब की जिंदगी बड़े अद्भुत ढंग से शुरू हुई, तुमने सोचा भी ना होगा कि ऐसी भी कहीं जिंदगी बदलती, ये भी कोई जिंदगी के बदलने का ढंग। रजब मुसलमान थे, पठान थे, किसी युवती के प्रेम में थे। विवाह का दिन आ गया, बारात सजी, बारात चली, रजब घोड़े पर सवार, मोर बांधा हुआ सिर में, बाराती साथ हैं, बैंड बाजा है, इत्र का छिड़काव है, फूलों की मालाएं, और बीच बाजार में अपनी ससुराल के करीब पहुंचने को ही थे, 10-5 कदम और, स्वागत के लिए तैयार थे ससुराल के लोग, और ये क्रांति घटी। घोड़े के पास एक अजीब सा फक्कड़ सा आदमी आके खड़ा हो गया, और उसने गौर से रज्जब को देखा, आंख से आंख मिली, वे चार आंखें संयुक्त हो गई। उस क्षण में क्रांति घटी, वह आदमी रज्जब का होने वाला गुरु था, दादू दयाल, और जो कहा दादू दयाल ने वे शब्द बड़े अद्भुत हैं, उन छोटे से शब्दों में सारी क्रांति छिपी। दादू दयाल ने भर आंख रज्जब की तरफ देखा, आंखें मिली, और दादू ने कहा, रज्जब तय गज्जब किया। सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक को ठौर। बस इतनी सी बात, देर न लगी, रज्जब घोड़े से नीचे कूद पड़ा, मोर उतार के फेंक दिया, दादू के पैर पकड़ लिए और कहा कि चेता दिया, समय पर चेता दिया। और सदा के लिए दादू को हो गए। बारातियों ने बहुत समझाया, भीड़ इकट्ठी हो गई, सारा गांव इकट्ठा हो गया, ससुराल के लोग आ गए, पर रज्जब तो बस एक ही बार दोहराने लगा बार बार, रज्जब तय गजब किया सिर पर बांधा मोर, आया था हरि भजन को करे नरक को ठौर। एक क्षण में ऐसी क्रांति संभव है? संभव है, क्रांति क्षण में ही होती है। जो कहते हैं समय लगाएंगे वो तो केवल टालते हैं, स्थगित करते। जो कहते हैं कल, वो तो करना नहीं चाहते। कल की बात ही झूठों की बात है। जो होना है आज होना, अभी होना, यहां होना, अभी या कभी नहीं। रज्जब ने ये ना कहा ये भी कोई बात है, ये कोई समय है। विवाह को जाता हूं बड़ी आतुरता से, और ये कोई साधारण विवाह न था, प्रेम विवाह था। ऐसी कोई माता पिता के द्वारा आयोजित जबरदस्ती लड़के को घोड़े पर नहीं बिठा दिया गया था। बड़ी मुश्किल से ये विवाह हो रहा था, बड़ी कठिनाई थी। ये प्रेम विवाह था, परिवार पक्ष में ना थे। बड़ी जिद से रज्जब ने ये विवाह करने की ठानी थी, और ऐसे लौट पड़ा, फेंक दिया उतार के मोर। याद आ गई कोई, तीर चुप गया, ये शब्द वाण हो गया। ये गुरु का आंख में आंख डाल के देख लेना, ये जरा सी सैन, ये जरा सा इशारा समझदार को इतना काफी है। सोचो जरा, कितनी आशाएं न बांधी होंगी रज्जब ने, अपनी प्रेयसी को मिलने जा रहा था। कितने सपने न देखे होंगे, क्या क्या मंसूबे, क्या क्या तासों के महल, कितने सुहावने गीत न रचे होंगे मन में। और एक क्षण में ऐसे झटके में सब तोड़ दिया, और एक फक्कड़ से आदमी के आंख में आंख डालने से ये बात हो गई। इसलिए कहता हूं रज्जब गजब का आदमी था। हुस्ने यूसुफ से तुझको क्या निस्बत, तू जमाने में बेमिसाल हुआ। कोई मुकाबला नहीं रज्जब का। बहुत लोग संत हुए हैं, मगर ऐसी त्वरा, ऐसी तीव्रता, ऐसी सघनता। वर्षों सोचते हैं लोग, विचार करते, चिंतन मनन करते, आगा पीछा देखते, हिसाब लगाते, गणित बिठाते, तर्क जुड़ाते, तब कहीं लोग संतत्व में कदम लेते। पर ऐसे ये कैसे हुआ होगा? मनुष्य की स्वतंत्रता है। इसलिए तुम चाहो तो अभी हो, इसी क्षण हो, लेकिन तुम चाहते नहीं कि अभी हो। और बेईमान तुम ऐसे हो कि तुम कहते हो मैं क्या करूं, अपने किए क्या होगा, विधि में जब होगा तब होगा, प्रभु की जब मर्जी होगी तब होगा। तुम बड़े सुंदर शब्दों में बड़े असुंदर भावनाओं को छिपाते हो, तुम बहाने खोजते हो और बहाने ऐसे कि लगे धार्मिक हैं, बहाने ऐसे कि शास्त्रों का सहारा है उनको, शास्त्र भी तुम्हारे लिखे हुए, तुम जैसे ही बेईमानों के वहां भी हस्ताक्षर है। लेकिन मैं तुमसे यह कहना चाहता हूं कि चाहो तो अभी हो जाए और ना चाहो तो कभी भी ना होगा। तुम कुछ नए थोड़ी हो, तुम उतने ही प्राचीन हो जितना प्राचीन ये अस्तित्व है। हिमालय नया है, तुम ज्यादा प्राचीन हो। क्या हुआ होगा उस घड़ी में, दादू दयाल ने क्या याद दिलाई? ये दादू दयाल को इस युवक के पीछे पड़ने की जरूरत क्या थी? और ये कोई घड़ी थी? ये कोई मौसम था? ये कोई वक्त था? इतनी बेरहमी तो ना करनी थी, थोड़ी तो करुणा करते, दो चार दिन तो इसे सुख में रह लेने देते। विवाह तो हो जाने देते, सुहागरात तो बीत जाने देते, इतनी क्या जल्दी थी? और क्या कहा और क्यों कहा? यह पहचान पुरानी होगी, यह आश्वासन पुराना होगा, यह वायदा नया नहीं था, इसलिए बात तत्क्षण बैठ भी गई। देखा होगा कि फिर चला भूल में पड़ने, फिर गिरा गड्ढे में, फिर शुरू होती है एक कहानी। शुरू हो जाए तो लौटानी कठिन होती चली जाती, क्योंकि हर कहानी की अपनी जटिलता है। पत्नी है, फिर जिम्मेवारी है, फिर बच्चे हैं, फिर बच्चों की जिम्मेवारी है, फिर जिम्मेवारियों से जिम्मेवारियों का जन्म होता है, फिर एक से दूसरा सिलसिला शुरू होता है। मेरे हिसाब से ठीक ही समय में पकड़ लिया, जरा देर और फिर जिम्मेवारियों का जाल गहरा हो जाता। मगर यह पुराना वायदा रहा होगा। यहां भी बहुत हैं जिनसे मेरी पुरानी पहचान है, यहां भी बहुत हैं जो नए नहीं हैं। तुम आकस्मिक थोड़ी ही आ जाते हो और फिर मेरे जैसे आदमी के पास कोई आकस्मिक तो नहीं आ जाता। ये कोई सस्ता धर्म तो नहीं है, इससे प्रतिष्ठा तो नहीं मिलती, होगी भी प्रतिष्ठा तो खो जाएगी, इससे कोई अहंकार मान मर्यादा तो नहीं बढ़ती, होगी भी तो मिट्टी में मिल जाएगी। मुझसे दोस्ती बनानी तो महंगा काम है, फिर भी कोई खींच लिए आती। सारी दुनिया खिलाफ होगी, सारी दुनिया विरोध करती होगी, फिर भी तुम चले आए हो। शायद तुम्हें भी याद ना हो, कहीं कोई पुराना गठबंधन होगा, कोई पुरानी भावर पड़ी होगी, याद भूल गई है, तुम्हें भूल गई होगी, मुझे नहीं भूली है। दादू ने देखा होगा कोई पुराना साथी संगी, कोई पुराना शिष्य, पहले भी कभी बैठ चुका होगा दादू की संगत में, फिर चला उलझने, फिर चला गड्ढे की ओर, पीछे बहुत रोया होगा, शायद किसी और जन्म में बहुत रोया होगा कि अब क्या करूं, पत्नी है फिक्र करनी होगी और बच्चे हैं और इनका विवाह तो करना ही होगा और इनको शिक्षा तो देनी ही होगी। अब आप कहते हो कि जागो, ये कोई वक्त है जागने का, थोड़ी देर रुको, अभी सब अधूरा अधूरा है, सब जमा देने दो, अभी गृहस्थी कच्ची है, थोड़ी पक्की हो जाने दो, आऊंगा जरूर आऊंगा, आना ही है, कब तक रुक सकता हूं, लेकिन अभी समय नहीं आया, आने दो मौसम, पकने दो फल, जरूर आऊंगा, ऐसा कभी कहा होगा। आज चूकने जैसा समय नहीं था, दादू ठीक समय पर आ गए। वो जो आंख में आंख डाली वो सिर्फ अचेतन में दबी हुई स्मृतियों को जगाने का उपाय था। जब गुरु शिष्य की आंख में आंख डाल के देखता है तो जिन बातों का शिष्य को भी पता नहीं रह गया है और जो उसके अचेतन गर्भ में पड़ी उनको सक्रिय कर देता है। याददाश्तें भूली बिसरी पुनर्जीवित हो उठती, बीज जो पड़े रह गए अंकुरित हो आते, आकांक्षाएं अभिप्साएं जाग उठती प्रबल वेग से। वो जो क्षण भर को दादू का रज्जब की आंखों में देखना है उसी क्षण क्रांति हो गई, पहचान गया होगा रज्जब कि अब बचने का कोई उपाय नहीं, इस आदमी ने अब ठीक समय में पकड़ा। अब मैं ये नहीं कह सकता पत्नी है, बच्चे हैं, घर गृहस्थी है, कच्ची है, सब व्यवस्थित कर देने दो, जिम्मेवारी ली है उसे पूरा कर लेने दो, आऊंगा जरूर आऊंगा। अब ये नहीं कह सकता अब इस आदमी ने ठीक समय पकड़ा है, ठीक ससुराल के द्वार पर पकड़ा है, गड्ढे के किनारे ही था, गिरने को ही था और पकड़ा है। रज्जब तय गजब किया और बात भी बड़ी प्यारी कही कि तुमने भी खूब गजब किया, पहले मुझे धोखा देता रहा कि अभी ये उलझन अभी ये उलझन, और अब ये तू अब ये कर रहा है जब कोई उलझन नहीं, अभी जबकि सब सुलझ सकता है, अभी जब का मार्ग साफ है, अभी इधर मुड़ के उधर मुड़, अभी चौराहे पर खड़ा है, नरक की तरफ जा कि स्वर्ग की तरफ जा, माया में पड़ कि प्रभु को खोज ले, अब तू ये गजब कर रहा है, अपने हाथ से अपना आत्मघात कर रहा है। आया था हरि भजन को और मुझसे वायदे किए थे तूने कि अगली बार आऊंगा तो बस हरि भजन करना है और कुछ भी नहीं, और मैं तुमसे कहता हूं तुमने भी बहुत बार इस तरह वायदे किए हैं कि अगली बार बस ये जीवन देख लिया, बहुत भोग लिया, बहुत बस हो गया, बहुत इतना काफी है, अगली बार अगर मौका मिल जाएगा तो अब तो हरि भजन करना है, अब तो उस प्राण प्यारे को खोजना है। मगर जैसे ही मर जाते हो स्मृति पे पर्दा पड़ जाता है, नया जन भूल गए पुराना सब, फिर आबासा, फिर शुरुआत, फिर वही भूले, फिर वही पुनरुक्ति, नया कुछ करने को यहां है भी नहीं, नया करोगे क्या? वही क्रोध है, वही काम है, वही लोभ है, वही माया, वही मोह, सब वही है, वही वर्तुल घूमता है, वही चाक है संसार का। सदगुरु के महत्वपूर्ण कामों में एक काम है कि वो तुम्हें याद दिला दे कि जो तुम कर रहे हो पहले भी बहुत बार कर चुके हो, नया कुछ भी नहीं। इतने उत्तेजित मत हो उठो, इतने दीवाने मत हो जाओ, जरा याद करो, स्मरण करो, खोजो अपने भीतर, क्योंकि तुम्हारी दबी हुई स्मृतियों में सब पड़ा है, जो भी तुम कभी रहे हो उस सब की याददाश्त तुम्हारे भीतर मौजूद है। जरा वहां अपने चेतना के प्रकाश को ले जाओ, जरा परतें उघाड़ो, जरा पर्दे हटाओ, और तुम भी पाओगे कि बहुत बार मरते वक्त तुम भी ये कह के गए थे कि अब की बार अगर आना हो तो हरि भजन करना, मगर वो मरते हुए आदमी की बात थी और जिंदा आदमी भूल जाता है। चलो ये तो पुरानी है, इसे छोड़ दो। जब तुम दुख में होते हो तब परमात्मा को याद कर लेते हो, जब सुख आ जाता भूल जाते हो, मौत आती याद कर लेते हो, जीवन मिल गया फिर भूल जाते हो, असफलता मिलती है तो मन में सन्यास का भाव उठने लगता है। सफलता मिलती तुम कहते हो अभी कोई वक्त है ये। बूढ़े होते हो तो सोचते हो सन्यास ले ले, जवान होते हो तो सोचते हो अभी तो मैं जवान। और मन के धोखे ऐसे कि बूढ़े से बूढ़ा आदमी दूसरे उसे बूढ़ा मानते हैं, वो थोड़ी अपने को बूढ़ा मानता। अमेरिका का एक करोड़पति 90 वर्ष की उम्र तक जिया। जब वो 90 वर्ष का हो गया, उसके मित्रों ने पूछा कि आप अब भी क्यों कमाए चले जाते, इतना तो है, बहुत है, और अब जिंदगी कितनी, अब कमाने की फिक्र, अब झंझट, अब भी दफ्तर जाने की जरूरत। पता है 90 वर्ष के बूढ़े आदमी ने क्या कहा, बुढ़ापे के लिए कुछ तो इकट्ठा करूं। 90 वर्ष का आदमी भी बुढ़ापे के लिए इकट्ठा कर रहा है। कोई मानता थोड़ी कि मैं बूढ़ा हूं। लोग कहते हैं हो गया होगा शरीर बूढ़ा, इससे क्या फर्क पड़ता है। जवानी तो मन की बात है, मन तो जवान है, शरीर से क्या फर्क पड़ता है। लोग इस तरह की बातें करके अपने को समझा लेते, दुख होता है तो सोचने लगते हैं, दुख गया कि भूल जाते हैं। ऐसा तुमने कितनी बार किया है, जब क्रोध में होते हो तो सोचा है कि क्रोध अब नहीं, जलाता है, दग्ध करता है, जहर है, लेकिन कितनी देर ये याद टिकती है, धुएं की लकीर की तरह कब मिट जाती पता नहीं चलता। फिर जरा सी बात और फिर वही आग, फिर वही क्रोध, फिर वही जहर। कितनी बार तुम काम के अनुभव में गए हो और कितनी बार पछताए हो, लेकिन फिर कोई वासना मन को पकड़ लेती और झकझोर जाती, और हर बार तुम ये कहते हो बस एक बार और, मगर वह एक बार चुकता नहीं। गजब का आदमी रहा होगा रजब। गुरु ने आंख में आंख डाली और जैसे सारा विस्फोट हो गया, याद आ गई उसे कि क्या वचन दिया था। फिर क्षण भर की देर न की, क्षण भर की देर अगर करता तो चूकता। उसी क्षण मोर उतार के फेंक दिया, बात खत्म हो गई। मोर को उतार के फेंका यानी संसार उतार के फेंक दिया, गुरु के चरणों में सिर रख दिया। उस दिन के बाद लोग चकित हुए, लोगों को भरोसा नहीं था कि इतनी त्वरा में, इतनी तीव्रता में लिया गया सन्यास गहरा हो सकेगा। लोग सोचते थे कि दो चार दिन में अकल आ जाएगी, और अभी तो जवान था, और अभी कैसे सन्यास्त हो जाएगा। बड़े बूढ़ों ने सोचा होगा कि घबराओ मत, दो चार दिन में बुद्धि लौट आएगी। मगर जो हो गई बात तो हो गई बात, निर्णय की बात है, निर्णय पर्याप्त है। आचरण को साधना नहीं होता, साधते कमजोर हैं। जिनके पास थोड़ी भी जीवंतता है उनका निर्णय ही उनका आचरण बन जाता है। एक निर्णय ले लिया, बात खत्म हो गई। फिर लौटकर पीछे देखना कमजोरों का काम नहीं, उसने लौटकर पीछे देखा। दादू तक को कहते हैं उस पर दया आई। दादू भी सोचने लगे होंगे कि अभी जवान था बेचारा, और मैं बीच बरात से लौटा लाया हूं। थोड़ा सुख ले लेने देता, ये मैंने क्या किया। तो दो चार आठ दिन के बाद दादू ने खुद रजब को कहा कि देख तू अभी जवान, तूने मेरी बात मानी सो ठीक, अब मुझे थोड़ा थोड़ा पछतावा होता है, तूने मुझे झंझट में डाला। तू मुझे माफ कर, ये मेरी भूल थी जो मैं तुझे बीच बारात में रोका। शायद दादू दयाल ने भी सोचा नहीं था कि ये हो जाएगी बात। लोग ऐसे काहिल, ऐसे सुस्त, ऐसे कायर कि होती कहां ऐसी बात। दादू दयाल ने सोचा होगा डाल आऊंगा बीच, होते होते होगी, वर्षों लगेंगे लेकिन बीच तो डाल आऊं। ये नहीं सोचा था कि बीज डालते ही फल लग जाएंगे, इतना चमत्कार नहीं सोचा होगा। पछताने लगे होंगे, मन में लगने लगा होगा कि ये मैंने क्या किया। इस भोले जवान को देखते होंगे रोज हरि भजन में बैठे, तो खुद ही सोचते होंगे कि ये मैंने और एक उपद्रव कर दिया, अभी इसे कुछ दिन भोग ही लेने देना था। फिर ये भी मन में लगता होगा अभी जवान है, कहीं डमाडोल हो जाए, भूल चूक हो जाए, गिर जाए। इतनी तेजी से छलांग ले ली, इतनी ही तेजी से गिर भी सकता है। तो कहते हैं दादू ने कुछ महीनों के बाद उसे कहा कि रजब तूने ठीक किया कि मेरी बात मान ली, अब मेरी एक बात और मान, तू संसार में अभी उतर ही जा। रज्जब ने जिस आंख से दादू की आंख में देखा तो दादू भी तिल मिला गए होंगे, फिर दोबारा वो बात नहीं उठाई। वो चमक, वो लपट, वो जलती हुई दो आंखें। कहते हैं रज्जब ने एक शब्द नहीं कहा, सिर्फ गुरु की आंख में देखा और सब कह दिया कि ये भी कोई बात है, और आपसे सुनू ये बात। सारे लोग समझा रहे हैं वो ठीक, वो ना समझे उनको समझाने दो, मगर आपसे ये सुनू बात। ये बात दोबारा उठाना ही मत, लेकिन ये कहा भी नहीं, बस उन आंखों की चमक ने कह दिया। छाया की तरह दादू दयाल के साथ रज्जब रहा, उनकी सेवा में लग गया, वे चरण उसके लिए सब कुछ हो गए, उन चरणों में उसने सब पा लिया। अद्भुत प्रेमी था रज्जब। जब दादू दयाल अंतर्धान हो गए, जब उन्होंने शरीर छोड़ा, तो तुम चकित होगे। शिष्य हो तो ऐसा हो, उसने आंख बंद कर ली तो फिर कभी आंख नहीं खोली। लोग कहते कि आंख क्यों नहीं खोलते, तो वो कहता देखने योग्य जो था उसे देख लिया, अब देखने को क्या है। कई वर्षों तक रज्जब जिंदा रहा दादू के मरने के बाद, लेकिन आंख नहीं खोली, देखने योग्य देख लिया। जो दर्शनीय था उसका दर्शन हो गया, अब देखने योग्य क्या है, आंख किस लिए खोलनी। ऐसा यह अद्भुत व्यक्ति, इसके वचनों को बहुत प्रेम और सहानुभूति से समझना। ये वचन किसी सिद्धांतवादी के वचन नहीं, क्रांति से गुजरी हुई एक चेतना से बही अमृत की धार है। ये वचन वचन ही नहीं है, ये तीर है, और अगर तुम राजी हो तो ये तुम्हें छेदेंगे, ये तुम्हें भी रूपांतरित कर सकते। रज्जब जैसे लोगों के वचनों की छाया में बैठना, क्रांति से दोस्ती बनानी है। इसके पहले की सूत्र में हम उतरे, कुछ और बातें इस अपूर्व घटना के संबंध में समझ लेनी चाहिए, क्योंकि यह घटना सिर्फ रज्जब और दादू के बीच घटी ऐसा नहीं है, यह शिष्य और गुरु के बीच घटने वाली अनिवार्य घटना है। ढंग अलग अलग होते होंगे, रूप रंग अलग होते होंगे, तर्ज तरन्नम अलग होता होगा, लेकिन यह घटना अनिवार्य घटना है। इसके बिना गुरु और शिष्य का संबंध निर्मित नहीं होता। एक तरह से देखो तो लगता है दादू ने भी बड़ा बेमौका चुना, दूसरी तरफ से देखो तो लगता है इससे सुंदर मौका कोई और हो नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि प्रेम से भरा हुआ यह हृदय, प्रेम से भरी हुई ये धारा, रज्जब के प्राण प्रेम से आंदोलित थे, प्रेसी से मिलने जा रहा था। प्रेम तो तैयार था, जरा सा रुख बदलने की बात थी। ये मौका ठीक मौका था। लोहा जब गर्म हो तब चोट करनी चाहिए। एक तरह से देखो तो लगता है कि ये ठीक नहीं था, मौजूद नहीं थी ये बात, ये जरा फक्कड़पन की बात मालूम पड़ती। दादू ने कुछ संगत बात नहीं की, लेकिन और गहरे झांक कर देखो तो लगेगा इसके पीछे एक पूरा मनोविज्ञान है। यह जान के तुम हैरान होगे कि दुनिया में जब भी कोई धर्म जिंदा होता है, नया नया पैदा होता है, तो उसके प्रति जो लोग आकर्षित होते हैं वो जवान होते हैं, और जब कोई धर्म बूढ़ा हो जाता और मर जाता, मुर्दा हो जाता, तो फिर मंदिर मस्जिदों में सिर्फ बूढ़े और बूढ़ियां दिखाई पड़ते। क्या कारण होगा? कारण है जीवन ऊर्जा। जिनका प्रेम ही सूख गया हो उनको परमात्मा की तरफ भी कैसे मोड़ोगे? प्रेम तो प्रेम है, चाहे किसी स्त्री की तरफ बहता हो और चाहे किसी पुरुष की तरफ बहता हो, यही मुड़ जाए तो उस परम प्यारे की तरफ बहने लगता है। रज्जब बड़े भाव से भरा होगा, उस घड़ी की जरा कल्पना करो, रज्जब के हृदय का थोड़ा चित्र उभारो। दीवाना था रज्जब, पागल था रज्जब, उसे एक स्त्री के लिए सब कुछ दांव पर लगाया था उसने। ये घड़ी थी, लोहा आग था, सुर्ख अंगार था, दादू ने ठीक समय चोट की। वही प्रेम जो संसार की तरफ बहा जाता था, वही प्रेम जो देह की तरफ बहा जाता था, वही प्रेम जो आज नहीं कल नरक बन जाता, उसी प्रेम को मोड़ लिया, उसी प्रेम को अपनी आंखों की तरफ मोड़ लिया, उसी प्रेम को अपनी आंखों के पीछे छिपे परमात्मा की तरफ मोड़ लिया। प्रेम ही है, चाहे संसार से करो और चाहे परमात्मा से करो। धन्यभागी हैं वे जिनके हृदय में प्रेम है। एक ही ऊर्जा है तुम्हारे पास, वही प्रेम जो प्रेसी थे था, वही लगाव, वही रस गुरु से हो गया। उस प्रेसी के बिना रज्जब जीना नहीं चाहता था, न मिलती प्रेसी तो मर गया होता। वही प्रेम एक दिन जब गुरु ने देह छोड़ी तो उसी प्रेम ने फिर आंखें नहीं खोली, देखने योग्य कुछ ना रहा। परमात्मा जैसा आदमी देख लिया था, अब और देखने योग्य क्या हो सकता था? आखिरी कमल देख लिया था, अब घास पात को क्या देखना था? यह प्रेमी की ही क्रांति है, इसलिए मैं तुम्हें याद दिलाऊं, प्रेम को मार मत डालना। और तुमसे जिन लोगों ने कहा है प्रेम को नष्ट कर दो, वे तुम्हारे दुश्मन हैं, उन्होंने तुम्हारे जीवन को मरुस्थल कर दिया है। प्रेम को मारना नहीं है, प्रेम का दिशा रूपांतरण करना है, प्रेम की यात्रा बदलनी। प्रेम एक तरफ जा रहा है, उसे तीर्थ की तरफ ले जाना है, प्रेम को तीर्थ यात्रा बनानी। भक्ति के मार्ग का इतना ही अर्थ है।
Nothing is said, nothing is heard, and the heart starts dancing with the master. La la la. Yeah.
nothing is said, nothing is heard, and the heart starts dancing with the master. Wow. इसके साथ ही हम आज के प्रोग्राम की समाप्ति की ओर हैं। आज के एपिसोड में हमने म्यूजिक माँ संगीत दिव्यम, मिलरेपा और प्रतिभा, और लास्ट में सेलिब्रेशन नंबर देवा प्रेम की एल्बम से लिया गया है। ओशो रेडियो के एक नए एपिसोड तक हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।
Let the earth touch.